Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जो पॉडकास्ट आप सुन रहे हैं वो ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप दूसरे विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर सुन सकते हैं। एक दिन ब्राज़ील की एक फ्लाइट में एक अधेड़ उम्र की गोरी महिला ने जब देखा कि उसकी सीट की बगल वाली सीट पर एक काला व्यक्ति बैठा है तो गुस्से से उसने एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरी बराबर वाली सीट पर एक काला आदमी बैठा है? मैं उसके पास नहीं बैठ सकती, तुम्हें मेरी या इस व्यक्ति की सीट चेंज करनी होगी। एयर होस्टेस ने विमान की करीब सभी सीटों पर एक नज़र दौड़ाई और देखा कि इकोनॉमी क्लास की कोई सीट खाली नहीं है। उसने उस गोरी महिला से कहा, बिजनेस क्लास में सिर्फ एक सीट खाली है, लेकिन आम तौर पर इकोनॉमी क्लास के किसी मुसाफिर को वहां जाकर बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसके बावजूद वर्तमान स्थिति को देखते हुए पायलट का मानना है कि किसी ख़राब इंसान के पास बैठ कर सफ़र करना किसी के लिए भी काफ़ी तकलीफदेह हो सकता है, इसलिए इस काले व्यक्ति को बिजनेस क्लास में बैठने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फिर उसने उस व्यक्ति से कहा कि सर, क्या आप चलकर बिजनेस क्लास में बैठ सकते हैं जहां हमने आपके लिए एक सीट रिजर्व कर दी है? दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर पॉडकास्ट का ये 15वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूँ अहमद अब्बास, आप सभी को मेरा सलाम। एक अंग्रेज बिजनेसमैन पीटर गोर्डन 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारत, ईरान और रूस के बीच यात्रा करते थे और भारतीय और ब्रिटिश उत्पादों को रूस निर्यात करते थे। गोर्डन का जहाज कोलकाता बंदरगाह से फारस खाड़ी का रुख करता था और ईरान की बुशहर बंदरगाह में लंगर डालता था। वहां से गोर्डन जमीनी रास्ते से अपना माल तब्रेज और उसके बाद वर्तमान आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया ले जाते थे। लेकिन एक बार गोर्डन के साथ बहुत बुरा हुआ और वो अपना माल नहीं बेच सके और जिनका कर्ज था वो अदा नहीं कर सके। कर्जदारों ने उनके जहाज की नीलामी का ऐलान कर दिया। इस तरह गोर्डन को दिवालिया घोषित कर दिया गया। लेकिन गोर्डन ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने व्यापार का मार्ग भी नहीं बदला। उन्हें यकीन था कि वो एक बार फिर भारत और रूस के बीच अपने व्यापार को तरक्की दे सकते हैं। लेकिन उनके सामने सवाल ये था कि वह अपनी खोई हुई साख को किस तरह बहाल करें और व्यापार को पटरी पर कैसे लाएं। कॉकेशिया की अपनी यात्राओं के दौरान इस अंग्रेज़ व्यापारी ने भांप लिया था कि रूस के नियंत्रण वाले इलाकों में उनके ही देश के लोग मुसलमानों और यहूदियों के बीच किस तरह से ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं। रूस के ज़ार शासक अलेक्जेंडर ने दुनिया भर में प्रचार के लिए पादरियों को भेजने वाले एक मिशनरी संगठन से कहा कि वो उनके नियंत्रण वाले इलाकों में अपनी गतिविधियां शुरू करें। इस संस्था का नाम रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग था। 1803 में रूस ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा था और वो पूरे कॉकेशिया इलाके पर अपने पंजे गाड़ना चाहता था। हमला करने से पहले ज़ार मुस्लिम बहुल इलाकों में पादरियों को भेजता था ताकि वो वहां जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करें और मुसलमानों की एकजुटता को भंग कर दें। इस तरह से ईरान में जो कोई भी ईसाई धर्म स्वीकार करता वो रूस का एक फौजी शुमार होता था। ये वही ज़माना था जब दिवालिया हो चुके कैप्टन पीटर गोर्डन कहीं से भी कुछ धन प्राप्त करने की कोशिश में थे। उन्हें लगा कि उनकी समस्या का हल रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के हाथ में है। उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग को सूचना दी कि वो ईसाई धर्म का प्रचार करने में रुचि रखते हैं और चूंकि ईरान कॉकेशिया और रूस के मार्ग को अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए वो इस रास्ते में बाइबल के अनुवाद को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सोसाइटी ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और गोर्डन के सफर पर आने वाले खर्च की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। गोर्डन ने बातों को इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है कि जो भी उनकी जीवनी को पढ़ता है उसे शक होने लगता है कि कहीं ये दिवालिया होने वाला व्यवसायी एडिनबर्ग सोसाइटी को धोखा देने और बदनाम करने का इरादा तो नहीं रखता था। उसने शिराज शहर के बारे में सोसाइटी को लिखा, लगभग 15,000 से 16,000 लोग यहाँ ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हालांकि गोर्डन से भी पहले शिराज जाने वाले मिशनरी वहाँ एक भी मुसलमान को ईसाई धर्म में नहीं ला सके थे। गोर्डन ने तबरेज के बारे में लिखा, इस शहर में हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं लोगों को 6 भाषाओं, रूसी, फ्रेंच, इतालवी, जर्मन, अंग्रेजी और सीरियक में ईसाई धर्म की तालीम देता हूँ। उन्होंने ये बात इस अंदाज में कही जैसे कि सोसाइटी के किसी सदस्य को ये पता ही नहीं है कि तबरेज के लोग तुर्की आज़री बोलते हैं। ईरान और रूस के बीच पहले चरण का युद्ध खत्म होने और 1813 में गुलिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद गोर्डन कॉकेशिया में रह रहे थे। उस समय रूसियों ने एडिनबर्ग सोसाइटी से आग्रह किया कि जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा कर लिया है वहां वो अपनी गतिविधियों को पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दें। 1816 में सोसाइटी ने अपना मुख्यालय कैस्पियन सी के तट पर अस्तारा खान में स्थानांतरित कर दिया। कॉकेशिया में प्रचलित जबानों जैसे कि तुर्की और आज़री में बाइबल का अनुवाद किया गया और गोर्डन और उनके साथियों ने बड़े पैमाने पर उसे लोगों के बीच वितरित किया। ऐसा लगता है कि गोर्डन उस दौरान व्यापार के नए अवसरों की खोज के साथ ही ब्रिटेन के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जानकारियां जुटाने में लगे थे। ये वो इलाका था जिस पर एक लंबे युद्ध के बाद रूस ने कब्जा कर लिया था, इसलिए ब्रिटेन के लिए इसका महत्व कई गुना बढ़ गया था। रूस ने ईरान के खिलाफ एक दूसरे युद्ध के बाद 1827 में तुर्कमन चाय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत कॉकेशिया के बचे खुचे इलाके भी ईरान से अलग हो गए। इसके बाद रूसियों ने इन इलाकों में सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए गंभीरता से प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने पादरियों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान की। रूस की इस नीति ने मुसलमानों को क्रोधित कर दिया और तुर्कमन चाय समझौते के 5 साल बाद ही कॉकेशिया में शेख शामिल दागिस्तानी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। शेख शामिल के जांबाज अनुयायियों ने थोड़े ही समय में कॉकेशिया के पर्वतीय इलाकों में रूसियों को खदेड़ दिया। यह आंदोलन कॉकेशिया में एक पूर्ण इस्लामी शासन की स्थापना के काफ़ी करीब पहुंच गया था, लेकिन रूसी किसी भी हालत में शेख के शासन को स्वीकार करने पर तैयार न थे, इसलिए उन्होंने शेख के अधीन इलाकों पर हमले लगातार जारी रखे। रूस के एक जनरल ने ऐलान किया कि जो कोई भी शेख का सिर काट कर मेरे पास लाएगा मैं उसे उसकी बराबर सोना दे दूंगा। जब यह खबर शेख तक पहुंची तो उन्होंने जनरल को संदेश भेजा, तुमने मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अगर कोई तुम्हारा सिर मेरे पास लाएगा तो उसे एक पंख भी इनाम में नहीं दूंगा। रूसियों के अलावा अंग्रेज भी शेख के भावी विद्रोह से भयभीत थे। वे कई वर्षों से पूर्वी एशिया में एक सिद्धांत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, यहूदियों को खोए हुए समुदायों की खोज और उनका समर्थन करना और उनकी मदद करना। ये वो मिशन था जिसे जोसेफ वुल्फ ने अफगानिस्तान में शुरू किया था। वो अफगानिस्तान के लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वे यहूदियों के लापता संप्रदायों में से एक हैं, ताकि इंग्लैंड पूर्वी यहूदियों के संरक्षण कानून के बहाने एशिया में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा सके। दागिस्तान में भी यही अफवाह फैलाई गई। अंग्रेजों का मानना था कि मध्य पूर्व में यहूदियों का निरंतर समर्थन इस अल्पसंख्यक समुदाय को विभिन्न देशों में इंग्लैंड का समर्थक बना देगा। अगर कॉकेशिया में शेख शामिल इस्लामी शासन की स्थापना में सफल हो जाते तो अंग्रेजों के हाथ इस क्षेत्र से कट जाते और वे दागिस्तान की यहूदियों को बहकाने में सफल न हो पाते। उसी दौरान जैकब सैमुअल नाम के एक अंग्रेज पादरी ने, जो यहूदी धर्म से ईसाई धर्म में गए थे, धार्मिक प्रचार के लिए कॉकेशिया का रुख किया। सैमुअल इससे पहले भारत, इराक और ईरान में ईसाई धर्म का प्रचार कर चुके थे। वो उस समय कॉकेशिया पहुंचे थे जब शेख शामिल का विद्रोह अपने चरम पर था। वो सबसे पहले दागिस्तान के यहूदियों के पास गए। वहाँ उन्होंने इस सिद्धांत को साबित करने की कोशिश शुरू कर दी कि दागिस्तान के यहूदी यहूदियों का लॉस्ट ट्राइब हैं। हालांकि उनका मुख्य मिशन शेख के आंदोलन को दबाने के लिए इंग्लैंड और रूस के तत्वों के बीच समन्वय बनाना था। आखिरकार वर्षों बाद रूसी शेख शामिल को एक पहाड़ी इलाके में घेरने और गिरफ्तार करने में सफल हो गए। शेख की गिरफ्तारी और विद्रोह की समाप्ति से अंग्रेजों ने राहत की सांस ली। उसके बाद जैकब सैमुअल ने भी कॉकेशिया छोड़ दिया और ईरान और उसके पड़ोसी देशों में होली बुक सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जिन लोगों को यूरोपीय पादरियों द्वारा ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया था, संभवतः उनमें से कुछ पादरियों की वेशभूषा धारण करने में रुचि रख सकते थे, लेकिन वर्षों तक ईसाई बनने वाले मूल निवासियों में से किसी को भी पादरियों के समूह में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में जब उन्हें अनुमति दी गई तो उन्हें सीमित अधिकार दिए गए और उन्हें यूरोपीय मिशनरियों की निगरानी में गतिविधियाँ करनी पड़ी। किम बांगुई ज़ेरे कांगो का एक अश्वेत युवा था जो बेल्जियम के मिशनरियों के संपर्क में आया और उनकी बातचीत सुनने के बाद उनसे ईसाई धर्म के बारे में उसने मालूमात की और उसने ये धर्म स्वीकार कर लिया। उसने अपना नाम बदलकर साइमन किम बांगुई रख लिया। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में ज़ेरे पर बेल्जियम के लोगों का कब्जा था और इसे बेल्जियम कांगो कहा जाता था। कुछ समय बाद किम बांगुई ने पादरियों का भेष अपना लिया। वो अब एक मिशनरी बन गया था, अपने देशवासियों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार करने की कोशिश कर रहा था। किम बांगुई बोलता बहुत अच्छा था। वहाँ के लोग उसे बेल्जियन लोगों की तरह अजनबी नहीं मानते थे, इसलिए वो लोगों को जल्दी आकर्षित कर लेता था। ज़ेरे लोगों के बीच जगह बनाने में उसे देर नहीं लगी और उसने वहाँ एक चर्च का निर्माण भी कर लिया। अब लोग वहां आकर उसके भाषण सुन सकते थे। चर्च की स्थापना और बेल्जियम के पादरियों से अलग अपना स्थान बनाने के कारण जो मूल निवासी ईसाई बन गए थे, वे प्रार्थना और धार्मिक समारोहों के लिए उसके चर्च में आने लगे। इस स्थिति ने बेल्जियम के पादरियों को नाराज कर दिया। उनमें से एक ने किम बांगुई से कहा, आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। पहली बार हम कांगो में ईसाइयों की एक बड़ी संख्या देख रहे हैं, लेकिन भीड़ चरवाहा नहीं बन सकती। ईश्वर ने आपको लोगों को आकर्षित करने की अच्छी क्षमता प्रदान की होगी, लेकिन ये मामला तो हम पादरियों से संबंधित है। किम बांगुई ने बेल्जियम के पुजारी के विरोध पर ध्यान नहीं दिया, खासकर ये बात जान लेने के बाद कि वे ज़ेरे के लोगों को भीड़ और खुद को चरवाहा समझते हैं। साइमन किम बांगुई के चर्च की निरंतर बढ़ती गतिविधियां और उनके अनुयायियों की लगातार वृद्धि से चर्च और ज़ेरे की बेल्जियम सरकार का धैर्य खत्म हो गया। किम बांगुई को 1921 में गिरफ्तार कर लिया गया और एलिजाबेथ विले में कैद कर दिया गया। उन पर बेल्जियम चर्च के खिलाफ गतिविधियां करने का आरोप लगाया गया। भले ही किम बांगुई को कैद कर लिया गया, लेकिन उनके अनुयायी यूरोपीय चर्चों में जाने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने धार्मिक समारोहों का गुप्त रूप से आयोजन शुरू कर दिया और यहाँ तक कि अन्य अश्वेतों को भी इस भूमिगत चर्च के समारोहों में भाग लेने के लिए बुलाने लगे। धीरे धीरे उनके चर्च में रुचि ज़ेरे की सीमाओं को पार कर गई और अन्य अफ्रीकी देशों के लोग भी किम बांगुई का अनुसरण करने लगे। बेल्जियनों ने साइमन किम बांगुई को तब तक जेल में कैद रखा जब तक वो जिंदा रहे। 1951 में उनका निधन हो गया। इस तरह बेल्जियनों ने उन्हें 30 साल तक कैद में रखा, लेकिन उनके चर्च के अनुयायियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि 18 साल बाद चर्चों की विश्व परिषद को कांगो के चर्च को मंजूरी देनी पड़ी और उनके अनुयायियों को स्वतंत्र रूप से इबादत करने के अधिकार को मान्यता देनी पड़ी। अगर 20वीं सदी की शुरुआत तक किम बांगुई जैसे पादरियों को अपना चर्च स्थापित करने की अनुमति नहीं थी, तो 16वीं सदी के भारत में ईसाई बनने वाले भारतीयों को पादरी बनने की इजाज़त कैसे हो सकती थी। सन 1541 में फ्रेंकोइस ज़ेवियर नामक एक पुर्तगाली पादरी लिस्बन से भारत पहुंचे और बंदरगाही शहर गोवा में बस गए, जहाँ पुर्तगालियों का कब्जा था। ज़ेवियर बड़े उत्साह से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में व्यस्त हो गए। वो एक घंटी लेकर सड़कों पर चलते हुए लोगों को इकट्ठा करते। वो उन्हें बाइबल और ईसा मसीह के जीवन की कहानियाँ सुनाते थे और चिकित्सा विज्ञान के अपने थोड़े से ज्ञान से उनकी बीमारियों को ठीक करने का दावा करते थे। ज़ेवियर ने भारत में रहने वाली विभिन्न जनजातियों से उनकी अपनी भाषा में बात करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने विभिन्न भाषाएँ सीखने के लिए दिन और रात एक कर दिए। कई एशियाई भाषाओं के उनके ज्ञान के कारण चर्च ने ऐलान किया कि उनके पास ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया भाषाई उपहार था। इसका मतलब था कि वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी भाषा बोल सकते थे। कुछ समय बाद वो भारत में पुर्तगाली चर्च के प्रमुख बन गए। भारत के लोगों के बीच गोरे और काले, गरीब और अमीर की समानता की बात करने वाले इस भावुक पादरी ने आदेश दिया कि किसी भी परिवर्तित भारतीय को चर्च में स्वीकार नहीं किया जाएगा। जेवियर सोच रहे थे कि अगर भारतीयों में से कोई एक पादरी बन जाता है तो वो चर्च में धार्मिक समारोह कर सकता है और उस स्थिति में एक दिन कोई पुर्तगाली कन्फेशन समारोह के लिए चर्च में आ सकता है, उसे उसके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। सभी ईसाइयों की तरह पादरी के लिए भी ये स्थिति असहनीय थी, इसलिए उसने भारतीयों को केवल उनकी नस्ल के कारण उनके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया। इस नस्लवादी मिशनरी को 100 साल बाद पोप द्वारा संत के रूप में मान्यता दी गई। संत उन लोगों की उपाधि थी जिन्होंने अपना पूरा जीवन और अस्तित्व ईसाई धर्म के लिए बलिदान कर दिया था। जिन क्षेत्रों पर उन्होंने विजय प्राप्त की, वहां यूरोपियों ने नए ईसाइयों को चर्च के प्रशासन में भूमिका निभाने और ईसाई धर्म में मिशनरी बनने की अनुमति नहीं दी। फिलीपींस में, जिस पर सैकड़ों वर्षों तक स्पेन का कब्जा था, बहुत से लोग ईसाई बन गए थे, लेकिन उनमें से किसी को भी मिशनरी या पादरी बनने की अनुमति नहीं थी। स्पेनिशों ने रेड इंडियंस को अमेरिका में चर्च में प्रवेश नहीं करने दिया। 19वीं शताब्दी में श्वेत मिशनरियों ने अफ्रीका में यूरोपीय चर्च के रैंकों और अधिकारियों को लागू किया। पादरी, बिशप और कार्डियल मिशनरियों को दी जाने वाली उपाधियां भी कुछ अलग तरह की थीं, और जो कोई भी प्रचार में सफलता प्राप्त करता था वो उच्च पद पर पहुंच सकता था और एक नई उपाधि पा सकता था। लेकिन ये स्थिति श्वेत मिशनरियों के लिए थी, काले पादरियों को ये सुविधा और अधिकार प्राप्त नहीं थे।